वचन। नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम। ले चल प्रभु तू मुझको वहाँ, तेरी स्तुति सदा होती जहाँ। ले चल प्रभु तू मुझको
तेरे लिए गाता रहूं मैं, तेरे ही गीत मेरी मंजिल हो तुम।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे अध्ययन का अंतिम समय होगा ताकि हम इस पुस्तक का समापन कर सकें। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना, सीखना और मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, तो निश्चय ही प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश और परेशान हैं, चिंतित और तनाव में हैं, दबाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, रोजगार की तलाश में हैं। पिताजी, हमारी विनती है कि आप उन पर अनुग्रह प्रदान करें, उनके जीवन में अपने शांति और आनंद प्रदान करें, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी हर एक जरूरतों को जानते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री उसके 13 अध्याय और 13 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। मेरे मित्रों, लेखक इब्रानी विश्वासियों से कह रहा है कि वे मंदिर के त्याग और विधि विधान के त्याग की चिंता न करें, वरन प्रभु यीशु के पास जाएं, क्योंकि यह सब तो व्यर्थ का है। जी हाँ, हमें भी उसके पास आना है। हम स्वर्गीय यरूशलेम के मार्ग पर हैं, यही वास्तविक विलगाव है, न कि मैं यह नहीं करता या वह नहीं करता। सच्चा विलगाव है किसी बात में जाना, न कि किसी बात से निकल आना। पौलुस कहता है कि वह सुसमाचार के निमित्त अलग किया गया है, प्रभु यीशु के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए अलग किया गया है। इब्रानी का वास्तविक अर्थ है जिसने पार कर लिया हो। अब्राहम को इब्रानी कहा जाता था क्योंकि वह परात नदी पार करके आया था। पार करने का अर्थ है पुराना जीवन त्यागना। इसराइल के वंशज लाल सागर पार करके दासत्व से मुक्त हुए थे और अब उनके पास एक नया जीवन था। इसके बाद उन्हें यर्दन नदी पार करके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना था। हमें यहां कैसा भी जीवन जीना क्यों ना हो, हमें भी कहा गया है आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। इब्रानी अपने मंदिर और धर्म का त्याग करना नहीं चाहते थे। इसी प्रकार आज भी विश्वासी सोचते हैं कि कलीसिया के सदस्य होने का अर्थ है उद्धार प्राप्त करना। सच तो यह है कि उन्हें विधि विधान तथा धर्म से निकलकर प्रभु यीशु के पास आना है। यही सच्चा विलगाव और सच्चा उद्धार है। हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यहां हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। लेखक फिर कहता है कि हमारे पास इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। जी हां, आज मैं और आप इस संसार में हैं, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। आगे हम देखते हैं विश्वासियों का आत्मिक जीवन। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आज परमेश्वर की संतान एक याजक है और वह परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा सकता है। विश्वासी के लिए 4 बलि हैं। पहला, आप आत्मत्याग कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद को देखें। किसी ने कहा है, जब कोई सच में परमेश्वर को अपने आप को दे देता है तो अन्य सब दान आसान हो जाता है। दूसरी बात है, आप अपना बटुआ बलि चढ़ा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1-5 पद में देखें। यदि प्रभु के पास आपका बटुआ नहीं है तो आप नहीं हैं। तीसरी बात है, आप स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं, जैसा यहां कहा गया है, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों के फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। चौथी बात हम देखते हैं, भले कामों की भेंट जो अगले पद में व्यक्त है। तो आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 16 पद। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे मित्रों, आप एक ऐसे रोगी विश्वासी के पास फल लेकर जाते हैं जिसे कोई नहीं पूछता, तो आप परमेश्वर को बलि चढ़ाने वाले याजक हैं। परमेश्वर अति प्रसन्न होता है, वह आनंदित होता है। मैं जब चित्त पढ़ा रहता था तब मुझे पत्र मिलते थे जो उन लोगों के थे जो मुझसे भी अधिक गंभीर अवस्था में थे। जी हाँ, उनके पत्र बहुत ही मनभावन होते थे। उनमें से एक पत्र तो वास्तव में बलि ही था। कुछ लोगों ने तो मेरी स्पर्श के साथ सेवा की, वह भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान था। मेरे मित्रों, यदि हमारा मसीही विश्वास व्यवहारिक ना हो तो व्यर्थ है। प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है, वहां वह कलीसिया का सिर है, परंतु उसके पांव यहां हैं। वह चाहता है कि प्रत्येक मसीही विश्वासी का व्यवहारिक जीवन हो, और वह आपके जूतों में चलना चाहता है, अर्थात आपके साथ चलना चाहता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। पद 7 में यही विचार था। यदि आपका पादरी परमेश्वर का जन है और आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, तो आप उसकी शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करने से अच्छा है कि आप उसे सुने ही नहीं। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 18 पद में आगे लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। स्पष्ट है कि पाठक लेखक को जानते थे, और मेरे विचार में लेखक पौलुस ही है, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यह बहुत ही अच्छा होता है कि आप शुद्ध विवेक के साथ रात में सोएं, एक ऐसा विवेक जो परमेश्वर के वचन से प्रकाशमान है। बहुत से लोग ज्योति में नहीं चलते हैं। यूहन्ना कहता है 1 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6-7 पद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, यहां पर बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा गया है कि यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हमें सहभागिता रखने के लिए कहा गया है ताकि हम ज्योति में चल सकें। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 19 पद में आगे लिखा है, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। इस पद से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ही इस पत्री का लेखक है। वह इस समय जेल में है और इब्रानी विश्वासियों से कहता है कि मैं तुम्हारे बीच आना चाहता हूं। अंततः वह भी तो एक इब्रानी ही था। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखेंगे आशीर्वाद के विषय में। यह आशीर्वाद मैंने अनेकों बार अपनी सेवा के समय काम में लिया है। प्रभु यीशु महान चरवाहा कहलाता था। भजन 23 अध्याय में उसे अच्छा चरवाहा कहा गया है। यीशु ने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 पद में। उसने अपनी जान देकर अपने आप को अच्छा चरवाहा सिद्ध किया है। महान चरवाहा होने के कारण वह अपनी भेड़ों को विकास में लाकर सिद्ध बनाता है। भजन संहिता 23 में वह अपनी भेड़ों को अर्थात हमें शीतल जल के पास ले जाता है और हरी हरी चारागाहों में अर्थात परमेश्वर के वचन को भोजन करवाता है। वह प्रधान चरवाहा भी है, जैसा भजन संहिता 24 में लिखा है। पत्रस कहता है कि जब हमारा प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तब हम अविनाशी महिमा का मुकुट उससे पाएंगे। पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में। मेरे मित्रों, उसने वह एक अच्छे चरवाहे के समान अपनी भेड़ों के लिए जान दे दी। वह आज महान चरवाहा की नाई स्वर्ग में उपस्थित है और अपनी भेड़ों के लिए लौटेगा। तब वह प्रधान चरवाहा कहलाएगा। उसके पास 100 भेड़ें थी और उसके पास स्वर्ग में कितनी भेड़ें होंगी? 99। जी नहीं, पूरी की पूरी 100 भेड़ें। उसका लहू सनातन वाचा का लहू है, अर्थात परमेश्वर ने जितनी भी वाचाएं बांधी थी सबका आधार उसी का लहू था। इब्रानियों की पत्री का उद्देश्य था तुम्हें सिद्ध करे। जी हां, वह हमें परमेश्वर की परिपक्व संतान बनाना चाहता है। आप एक बच्चे को पालने में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु उसे 20 वर्ष बाद भी पालने में देखें तो बहुत दुख होगा, क्योंकि उसके साथ गंभीर समस्या है। आज अनेक भक्तों की यही दशा है। मैं कहना चाहता हूं कि अनेक विश्वासियों की यही दशा है। उन्हें परिपक्व होना है, उन्हें बढ़ना है वचन की संगति में, ताकि वे भी बड़े होने के रूप को देख करके समझ सकें। हर एक भली बात में उसकी इच्छा पूरी करो। यही परमेश्वर की संतान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, हम यहां पर देख रहे हैं आशीर्वाद। जी हां, मैंने इन पदों को हजारों बार आशीर्वाद देने में काम में लिए हैं। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद। लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं भेड़ों का महान रखवाला। यहां प्रभु यीशु को महान रखवाला कहा गया है। भजन संहिता 22 में उसे अच्छा चरवाहा कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 पद में वह स्वयं अपने आप को अच्छा चरवाहा कहता है। अच्छा चरवाहा होने के नाते उसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। जी हां, एक महान रखवाला होने के नाते वह अपनी भेड़ों को सिद्ध करके उनका निर्माण करता है। इस तथ्य को यहां और भजन संहिता 23 में उजागर किया गया है। वह हमें हरी हरी चारागाहों में अर्थात परमेश्वर के कोमल वचन में चराता है। भजन संहिता 24 में उसे प्रधान चरवाहा कहा गया है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 4 पद में पत्रस कहता है, जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। वह एक अच्छा चरवाहा होने के कारण भेड़ों के लिए मर गया, परंतु आज वह एक महान रखवाला है और भविष्य में एक दिन वह अपने भेड़ों के लिए प्रधान चरवाहा बनकर आएगा। उसके पास 100 भेड़े थी और स्वर्ग में भी वह 100 भेड़ों के साथ में है, न कि 99 भेड़े। जी हां, पूरी की पूरी 100 भेड़े। हम आगे पढ़ते हैं सनातन वाचा के लहू के गुण से। प्रभु यीशु का लहू परमेश्वर की हर एक वाचा का आधार रहा है। तब हम आगे देखते हैं, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। यह इब्रानियों की पत्री का मुख्य उद्देश्य है। हमें कहा गया है हम सिद्धता को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, वह चाहता है कि हम परिपक्व हो जाएं, परमेश्वर की पूर्ण विकसित संतान हो जाएं। एक शिशु को पालने में देखना बहुत अच्छा लगता है, परंतु यदि 20 वर्ष बाद भी वह पालने में पड़ा हुआ हो और उसके मुंह से दा 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 की आवाज आती हो तो उसके साथ गंभीर समस्या है। आज हम में से कई विश्वासी अपने आप को उसी स्थान पर रखे हैं। कुछ विश्वासी जो 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, यहां तक कि कुछ 25 और 40 साल के हैं, लेकिन उनके साथ भी समस्या यही है कि वे अभी भी शिशु ही हैं। अनेक भक्त हैं जिन्हें विकसित होने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री उनकी सहायता करेगी। तब हम आगे पढ़ते हैं, हर एक भली बात में उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की संतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसकी इच्छा पूरी करना। किसकी? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। आपके जीवन में उसे अपनी इच्छा पूरी करने देना, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, इब्रानियों के पत्रे 13 अध्याय उसके 22 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। मेरे मित्रों, यहां पर देखिए कि यह कैसी व्यक्तिगत बात है। वह जब कहता है कि उसने बहुत संक्षेप में लिखा है तो मुझे हंसी आती है। जी हां, मेरे विचार में यह एक लंबा पत्र है, परंतु लेखक कहता है कि वह संक्षेप में लिख रहा है। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमोथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। या फिर पौलुस के पत्र का सा ही लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तीमोथियुस भी जेल में था। अंग्रेजी बाइबल के नीचे लिखा है कि तीमोथियुस ने इब्रानियों को रोम से पत्र लिखा था। यह पत्र का भाग नहीं है, यह किसी का अपना विचार है। वह गलत हो सकता है, मैं भी इसे पौलुस का पत्र कहकर गलती कर सकता हूं। सच तो यह है कि पवित्र आत्मा ने यह पत्र लिखा, और वही है जो हमें परमेश्वर की बातें समझाता है। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय के 24 पद में हम पढ़ते हैं, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो, इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। मेरे मित्रों, लेखक रोम में था और पौलुस भी रोम में था। वह अति महान आशीर्वाद के साथ पत्र को समाप्त करता है, और मैं भी आशीर्वाद के साथ इस पत्र और अध्ययन का समापन करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 25 पद को। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इब्रानियों के पत्री के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अपने जीवन में आपने अवश्य ही उन बातों को सीखा है और मैं यह भी आशा करता हूं कि आपने अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश की है। मेरे प्रियो, अब हम अगले अध्ययन में एक नए पुस्तक के साथ अध्ययन को आरंभ करेंगे। आप उसमें भी अवश्य भागी हों, अपने मित्रों को भी बुलाएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से सीख सकें। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।